الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مظلوما مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास के अंदर हम सूरह बनी इसराइल की तफसीर पढ़ते हैं, मारिफुल कुरान की जिल्द नंबर 5 से। इसमें जो अभी आयात तिलावत की गई हैं, आयत नंबर 18 से लेकर के 21 तक हैं, और इनका हम पहले तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर खुलासे तफसीर और मारिफ मसाइल, जैसा कि मारिफुल कुरान की तरतीब है। पिछली क्लास के अंदर हमने जो इससे पहले वाली आयात थी, आयत नंबर 17 तक पढ़ के मुकम्मल करी थी, और इनमें जो आखिरी टॉपिक था कि मालदारों का कौम पर असर होना एक तबई अमर है, तो इसके बारे में काफी बात हो चुकी है। किसी को कोई सवाल है इस टॉपिक के ऊपर तो पूछ लीजिए, या जिस ये मजीद इसमें ऐड करना चाह रहा था जो कि पिछली क्लास में रह गया था, वो ये कि जो कौम के अमीर होते हैं, जिनके पास सिर्फ ये नहीं कि दौलत भी होती है, बल्कि जिनके पास जो है वो अथॉरिटी भी होती है, ठीक है, यानी उनके पास हुकूमत भी होती है, तो वो लोग जो है ना वो कौम के ऊपर एक बहुत यानी ज्यादा असर डालते हैं, उनका उनका एक इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, ठीक है, कि जो इंसान होते हैं वो अपने मुलूक के यानी अपने बादशाहों के या अपने सरदारों के दीन के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो अपने सरदारों के दीन पर होते हैं, इसकी कोई अगर आप में से कोई बताए, थोड़ा सा क्विज भी हो जाए, ठीक है, कि इसकी वजह क्या बताई गई है या क्या समझ में आती है कि अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, ठीक है, लोग जो है वो अपने सरदारों के या अपने अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई दीन तो अल्लाह का है ना, तो लोग तो अल्लाह के दीन पर होते हैं, या दीन तो रसूलों का है तो लोग तो रसूलों के दीन पर होते हैं, तो ये अमीरों के दीन पर होने का या बादशाहों के दीन पर होने का क्या मतलब है, या कैसे ऐसा होता है मुमकिन? जी, तो आप क्या जवाब देंगे? जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, तो ये तो आपने उल्टा जवाब यानी सवाल ही नहीं समझा, तो बात उल्टी कर दी एज यूजुअल। नहीं, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जैसे हुक्मरान होते हैं तो अवाम वैसे कैसे बन जाते हैं? दे हैव पावर एंड मीन्स टू इन्फ्लुएंस। जी, जाहिर है, दे हैव पावर, जब भी तो वो हुक्मरान कहलाते हैं, तो दे हैव, तो आपका जवाब ये है कि मीन्स टू इन्फ्लुएंस, दिल में पैसे और पावर की अजमत ये अवाम में होती है। हाँ, ये बहुत अच्छा जवाब है कि जिन अवाम के दिलों में पैसे की अजमत होती है और पावर की अजमत होती है ना, अल्लाह की पावर और अल्लाह के खजानों की अजमत के बजाय इंसानों के खजानों और इंसानों के पावर की अजमत उनके दिलों में होती है, तो जाहिर सी बात है, जिस शख्स के पास पावर होगी, जिसके पास अजमत होगी, कुव्वत होगी और माल पैसा होगा, तो वो उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अल्लाह की दौलत तो किसी को नजर नहीं आती है ना, राइट? अल्लाह की दौलत तो नजर नहीं आती। अल्लाह की दौलत के बारे में तो नबी बताते हैं कि अल्लाह ताला के खजाने जो हैं वो अनलिमिटेड हैं और अल्लाह के पास सब कुछ है, और वो तो नबी बताते हैं ना, इंसानों को तो नजर नहीं आता ना ये। ठीक है, तो नबी की बात पर जो एतमाद करता है तो उसकी नजर फिर अल्लाह की दौलत पर जाती है और अल्लाह की अजमत पर जाती है, और जो नबी की बात पर एतमाद नहीं करता, उसको इग्नोर करता रहता है, सुनी अनसुनी करता रहता है, तो उसकी नजर तो सिर्फ उसी शख्स की दौलत पर जाएगी ना जिसकी दौलत उसको अपनी आंखों से नजर आ रही है। और वो कौन होते हैं? वो सरदार होते हैं, वो जो है वो हुक्मरान होते हैं। तो ये अच्छा जवाब है, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है कि अच्छा। तो दूसरा ये कि उनके जो हुक्मरान होते हैं ना, उनके पास मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, मीन्स टू इन्फ्लुएंस होते हैं, अवाम अमीरों से मुतासिर। जी क्यों मुतासिर होते हैं, ये तो सवाल है। हुकूमत की वजह से हुक्मरान के जाहिर जेरे असर होते हैं, सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में तो कहा जाता है कि नहीं, ये तो हुक्मरानों के कंट्रोल में नहीं है, ये तो अवाम के पास है ना सोशल मीडिया। ठीक है, लेकिन जो दूसरा मीडिया है वो तो हुक्मरान के कंट्रोल में होता है ना। ठीक है, जैसे प्रिंट मीडिया, अखबारात, जराइद, वो हुक्मरानों की मर्जी के बगैर नहीं छप सकते हैं। ठीक है ना, तो जो 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 न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, वो हुक्मरान की मर्जी के बगैर उसमें चीजें नहीं छापी जा सकती हैं। ठीक है, उन्होंने कहा होता है कि जी हम आपका न्यूज़पेपर बंद कर देंगे, ठीक है ना, हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, हम आपके जो है ना वो इश्तहारात बंद करवा देंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो इश्तहारात की आमदनी से चलते हैं। ठीक है ना, तो हुक्मरान कहते हैं भाई हम आपके इश्तहार बंद करवा देंगे, तो फिर आपका न्यूज़पेपर खुद ही बंद हो जाएगा। ठीक है ना, पीपल एडमायर देयर लाइफ स्टाइल, लोग उन्हें कामयाबी का मेयार समझते हैं। ठीक है, हुक्मरान की नीयत का असर होता है। ओहो, आपको तो वो क्या कहते हैं, अनार वाला वाकया याद है, हुक्मरान की नीयत का असर होता है। बात सही है आपकी, अच्छा, जजाकुमुल्लाह। ठीक है, तो मीडिया जो है ना, ये हुक्मरानों के कंट्रोल में होता है। ठीक है, ये मीडिया आजाद नहीं होता, ठीक है, कि अपनी मर्जी से आपको दिखाए वो ड्रामे जो वो दिखाना चाहता है, नहीं, ये अपनी मर्जी से ड्रामे नहीं दिखाते। हम बेवकूफ होते हैं कि हम समझते हैं कि ड्रामे जो है ना वो क्या कहते हैं, वो ड्रामे राइटर्स के लिखे हुए ड्रामे होते हैं, तो जो ड्रामा राइटर चाहता है वो ड्रामा लिख देता है और टीवी वाले उसको बना लेते हैं। हम बेवकूफ हैं, ठीक है ना, हम बेवकूफ हैं जो ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ड्रामा राइटर हुक्मरान की मर्जी से ड्रामा लिखता है, ठीक है, और वही ड्रामा जो है ना वो टीवी के ऊपर चलता है, उसके अलावा कोई ड्रामा चल नहीं सकता। अगर कोई ड्रामा वो हुक्मरान की मर्जी के खिलाफ लिखेगा ना, वो ड्रामा टीवी पे चल नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? वो ड्रामा टीवी पे चल नहीं सकता। ठीक है, तो जब ड्रामा लोग जो लोग ड्रामा देखने वाले लोग होते हैं ना, ठीक है, तो वो फिर हुक्मरान की मर्जी वाला ड्रामा देखते हैं, और जब वो ड्रामा देखते हैं या इंडिया में क्या कहते हैं उसको, सीरियल देखते हैं, है? खाने वाला सीरियल नहीं बल्कि ड्रामे वाला सीरियल। तो वो जब वो सीरियल देख रहे होते हैं ना, तो उस सीरियल का जो जो फैज होता है ना, फैज वो उनके कुलूब के अंदर उतर रहा होता है, और उनके जहन जो है ना फिर उस फैज से मुतासिर हो रहे होते हैं और उनकी जहन साजी हो रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से ड्रामों को आप देख लें कि वो उसमें क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, बेहयाई, फहाशी, राइट, और विमेन एम्पावरमेंट सो कॉल्ड। ठीक है, और अभी कल आप में से किसी ने साजिश को भेजा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ड्रामा बड़ा मकबूल हो रहा है। भाई मकबूल हो रहा है क्या मतलब? भाई जाहिर सी बात है, ड्रामे देखने वाले होते हैं वो तो देखते ही हैं। ठीक है, तो वो ड्रामा बड़ा मकबूल हो रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि कम उम्री के अंदर जो शादी है ना, ये तो डिजास्टर है। कम उम्री में जो शादी करते हैं ना, वो तो बस बर्बादी होती है, खाना खाना बर्बादी होती है, और शादी करनी नहीं चाहिए, है ना, कम उम्री में शादी करनी ही नहीं चाहिए। कम उम्री से मुराद क्या है? टीन्स, टीन से लेकर के जो अर्ली 20s होते हैं, इसको कम उम्री कहते हैं ये लोग, ठीक है। ज्यादा उम्री क्या कहते हैं जी, 35 के ऊपर जो है ना वो उम्र सही है शादी करने के लिए, ठीक है। उससे नीचे जो है ना ये कम उम्री की शादी है। तो वो उसको ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ही कम उम्री में शादी करना वो भी मुनासिब नहीं होता, 15 साल से कम में, ठीक है, आजकल के दौर के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन ये मैसेजेस दे रहे होते हैं आपको, ठीक है ना। ये मैसेजेस जो होते हैं ना, ये सब लिमिनल मैसेजेस कहलाते हैं, जो कि बजाहिर आपको नहीं नजर आ रहा होता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इन द बैकग्राउंड वो आपके जहनों के अंदर जो है वो ऐसे मैसेजेस उतार रहे होते हैं, ठीक है। एक और ड्रामा इस वक्त जो है वो पाकिस्तान टीवी के ऊपर या तो चलना शुरू हो गया है या पता नहीं चलने वाला है, अल्लाह आलम, किसी ने मुझे भेजा उसके बारे में, ठीक है। तो वो ये है कि उसमें ना बिल्कुल क्लीन शेव्ड और जो है ना वो बड़ा खूबसूरत किस्म का नौजवान जो है ना वो रिलीजियस स्कॉलर है, रिलीजियस स्कॉलर, ठीक है। और वो बड़ा यानी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अच्छे अखलाक वाला है और जो है ना बड़ा पॉजिटिव माइंडेड है, और वो रिलीजियस स्कॉलर जो है ना वो किसी को अल्लाह से जोड़ रहा है, ठीक है। अब ये जो इस किस्म का रिलीजियस स्कॉलर दिखा रहे हैं, तो ये क्या करना चाह रहे हैं कि जो आपके मदारिस के रिलीजियस स्कॉलर्स हैं ना, तो उनको आप बुरा तो पहले भी समझ रहे हैं और आप उनको मजीद जो है ना वो इररेलीवेंट समझना शुरू कर दें कि आप इन मौलवियों की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मौलवी दिखा रहे हैं ना, जो स्कॉलर साहब दिखा रहे हैं, वो अंग्रेजी भी बोलता होगा और उसकी शक्ल भी जो है ना वो बड़ी जबरदस्त दुनियावी एतबार से बड़ी खूबसूरत सी शक्ल है, दाढ़ी वाड़ी की भी कोई तकलीफ नहीं उसने उठाई हुई है। तो ये ऐसे लोग जो है ना ये होते हैं असल रिलीजियस स्कॉलर्स, और इनको हमें फॉलो करना चाहिए, ये हमें अल्लाह से जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो आपको ऐसा इमेज दिखा रहे हैं कि जिसको कि फिर वो आपके जहनों के अंदर जो है ना वो पक्का करना चाहते हैं कि भाई ऐसे लोगों को देखो, ऐसे लोगों से सीखो, ऐसे लोगों को अल्लाह वाला मानो, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक कि मेरे रब ने मुझे दाढ़ी छोड़ने का हुक्म दिया है और मूछें कतरने का हुक्म दिया है, इस हदीस को तुम नाउज बिल्ला कचरे की ड्रम में फेंको, ठीक है ना, कचरे की बाल्टी में नाउज बिल्ला हदीसों को फेंको, सहाबा किराम की जिंदगियों को फेंको, ठीक है ना। ये सीरियल्स का, ये ड्रामों का असर होता है, और ये ड्रामे और सीरियल जो होते हैं ये हुक्मरानों के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो इसके जरिए से फिर वो, अच्छा पुराने जमाने में ये नहीं होते थे, लेकिन दूसरे किस्म के मीडिया पुराने जमाने में भी होते थे, ठीक है। तो जो अवामुन्नास की अक्सरियत होती है ना, उनके दिल में चूंकि अल्लाह उनमें उनके दिलों के अंदर दरअसल दुनिया की मोहब्बत भरी हुई होती है अक्सरियत की, तो हुक्मरानों के पास जो भी होता है वो उसको कबूल कर रहे होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब बादशाहों को खतूत लिखे, है ना, 6 हिजरी के, हम सीरत क्लास के अंदर अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा है ना कि 6 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम ने बादशाहों को खतूत लिखे दावत के लिए कि तुम असलम तस्लिम मुसलमान हो जाओ और सलामती में आ जाओ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खतूत में यही लिखा कि तुम अगर मुसलमान हो जाओगे ना, कैसर, किसरा और क्या कहते हैं नजाशी और मकूकस, ठीक है ना, ये सारे हुक्मरान थे, बादशाह थे, कि तुम अगर मुसलमान हो जाओगे ना तो तुम्हारे कौम का जो है वो इस्लाम, अगर तुम्हारी कौम तुम्हारा तुमसे, जाहिर है तुम्हारी कौम भी तुमसे मुतासिर होगी और वो भी मुसलमान हो जाएंगे, तो तुम्हें उनकी इस्लाम का फायदा होगा, लेकिन अगर तुम मुसलमान नहीं होगे बल्कि तुम कुफर पर ही रहोगे ना, तो तुम्हारी जो कौम है ना उसके कुफर का अजाब भी तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारी कौम का गुनाह भी तुम्हारे ऊपर आएगा, क्योंकि तुम्हारे इन्फ्लुएंस में वो लोग हैं, ठीक है ना। तो ये मेजोरिटी की बात ऐसी होती है, माइनॉरिटी होती है ना वो ऐसी नहीं होती। माइनॉरिटी जो है वो यानी इतने स्ट्रांग होते हैं और इतने नेक होते हैं, बहुत कम लोग जो कि हुक्मरान के दीन के ऊपर नहीं होते, वो फिर खुद ही जो है ना वो फैसला करते हैं और वो सच्चाई को जो है वो एम्ब्रेस कर लेते हैं। जैसे रोम के अंदर बहुत सारे ऐसे नेक लोग थे कि जिनको जैसे ही पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और अपने रिसालत का इकरार कर चुके हैं, वो मुसलमान हो गए, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम थे ऐसे लोग। ठीक है, अवाम नास तो मीडिया को फॉलो करती है, जिस जमाने में जैसा मीडिया होता है वो उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इस बात को समझेंगी कि आपने मीडिया को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आपने टीवी को फॉलो नहीं करना है, टीवी नहीं देखनी है। ठीक है, टीवी में सिर्फ बदनजरी का गुनाह नहीं है कि जी नाउज बिल्ला गंदी चीज देखने को मिलती है और जो है वो औरतों का लिबास सही नहीं होता तो इस वजह से उनको देखना नहीं चाहिए। नहीं, सिर्फ इतना मसला नहीं है, बल्कि जब आप उसको देख रहे होते हैं उसके अंदर जो वो सबलिमिनल मैसेजेस आपको देख आपके जहनों के अंदर उतार रहे होते हैं ना, तो उनकी वजह से जो है ना वो आपकी सोच तब्दील हो जाती है और आपका ईमान और अकीदा तब्दील हो जाता है। ठीक है, और ईमान से फिर हाथ धो बैठता है इंसान। तो टीवी जो है वो ईमान की टीबी है। हजरत यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि टीवी तो ईमान की टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोसिस है ना, टीबी के कितना खतरनाक मर्ज होता है वो टीबी का मर्ज। अच्छा, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु, के जिसने जो इरादा करता है उजरत का, जल्दी का। ठीक है ना, जल्दी क्या चीज है यहाँ पर? जल्दी से मुराद सिर्फ जो है वो किसी काम के अंदर जल्दी नहीं, बल्कि जो दुनिया की जिंदगी है ना ये जल्दी है और आखिरत की जिंदगी जो है वो बाद में आने वाली है। ठीक है ना, वो लेटर आखिरत की जिंदगी। तो जो दुनिया की जिंदगी का इरादा करता है ना, ठीक है, अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ, तो हम उसको जो है ना वो इसके अंदर यानी दुनिया की जिंदगी के अंदर, ठीक है, हम उसको जल्दी दे देते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं हम उसको दुनिया की जिंदगी में जल्दी दे देते हैं। ठीक है, लिमन नुरीदु, जिसका वो इरादा करते हैं, ठीक, जिसका जिसका हम इरादा करते हैं, ठीक, जिसका हम इरादा करते हैं वो हम उनको जल्दी दे देते हैं। सुम्मा जालना लहू जहन्नम, और उसके बाद हम उसके लिए जहन्नुम बना देते हैं। ठीक है, हम उसके लिए जहन्नुम बना देते हैं यानी जहन्नुम उसका ठिकाना बना देते हैं। यसलाहा मज़मूमम मदहूरा, दाखिल होगा वो उसके अंदर जहन्नुम के अंदर। यहाँ पे जो हा है वो जहन्नुम की तरफ पॉइंट कर रही है, मज़मूमम मदहूरा। ठीक है, यानी मजम्मत याफ्ता, मजम्मत कहते हैं ना जिसको कि ब्लेम किया गया हो, मजम्मत क्या की जाती है किसी किसी चीज की, कि हाँ भाई ये तो बुरी थी, ये तो इसने गलत काम किया, तो वो ब्लेम वर्दी हो करके, और मदहूरन, मदहूरन का मतलब होता है कि धकेला गया होगा। ठीक है, जिसको के धक्के दे दे करके कहीं पे पहुंचाया जा रहा हो तो मदहूरा, तो उसको ब्लेम भी किया जा रहा होगा और उसको जो है ना वो धक्के भी दिए जा रहे होंगे। इस तरीके से वो जहन्नुम में दाखिल हो जाएगा। कौन दाखिल होगा जहन्नुम में? कि जिसने उजरत करी होगी, जल्दी करी होगी कि मुझे तो इस दुनिया के अंदर ही चाहिए जो चाहिए। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो ऐसा कर रहा होगा ना, हम उसको इस दुनिया की जिंदगी में वो देंगे नहीं जो कि वो चाहता है, बल्कि जो हम चाहते हैं ना हम उसमें से हम थोड़ा बहुत दे देंगे उसको। ठीक है ना, अच्छा ये बाकी तफसील आगे आएगी तो हम अगली आयत पढ़ते हैं। वमन अरादल आखिरत, और जिसने आखिरत, आखिर आखिर का मतलब लास्ट, ठीक है ना, जो एंड में आएगी वो आखिरत है, तो जिसने आखिरत का इरादा किया ना, वसा लहा सा, और उसकी मेहनत के लिए मेहनत करी, सा लहा, सा का मतलब मेहनत करी, सई होती है ना सफा और मरवा के दरमियान आप बड़ी मशक्कत करते हैं, ठीक है, सई करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, तवाफ के अंदर अगर आप मुताफ में जाकर के तवाफ करें ना तो कोई खास तकलीफ नहीं होती, 15 से 20 मिनट में भी आपका तवाफ मुकम्मल हो सकता है। ठीक है, तो तवाफ जो है ना वो आसान भी हो सकता है, और अगर आप ऊपर के फ्लोर में जाकर के तवाफ करें तो वो मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन तवाफ में आसानी भी मुमकिन है। ठीक है, लेकिन सई में आसानी नहीं, सई तो हर एक ने उतनी ही करनी है, ठीक है ना, बूढ़े ने भी उतनी ही सही करनी है, बच्चे ने भी उतनी ही सही करनी है, और मर्द ने भी उतनी सही करनी है, और औरत ने भी उतनी सही करनी है। तो सही का जो लफ्ज है उसके लिए फिक्स हो गया सफा और मरवा के दरमियान के लिए, क्योंकि वो मशक्कत है। ठीक है, तो जिसने सही करी उसके लिए, यानी मुशक्कत उठाई उसके लिए आखिरत के लिए, सायहा उसकी वाली मुशक्कत, ठीक है, जो आखिरत को हासिल करने वाली मुशक्कत है वो करी, यानी ऐसी नहीं अपनी मनमर्जी वाली मुशक्कत में कर रहा है, नहीं वो वाली मुशक्कत नहीं, बल्कि जो आखिरत वाली मुशक्कत है वो वाली मुशक्कत करी। वह हुआ मुमिनुन, और वो आखिरत पर ईमान रखने वाला भी हुआ। ठीक है, नबी पर ईमान और आखिरत पर ईमान, मोमिनुन, ठीक है ना। फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, बस वो काना सायुहुम, ऐसे लोगों की जो सई है ना, ऐसे लोगों की जो मेहनत है ना, तो मशकूरा वो ऐसी है कि जिस 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 जिसका शुक्र अदा किया जाए, यानी जिसको अप्रिशिएट किया जाए, यानी देयर मेहनत, देयर क्या कहते हैं, एफर्ट इज अप्रिशिएबल, ठीक है ना, जिसकी की अप्रिसिएशन हो, जिसकी की तारीफ की जाए, वो तारीफ के काबिल है। ठीक है, सो ऐसों की दौड़ ठिकाने लगी है, ठिकाने लगी है मतलब वही तारीफ के काबिल है, उसका अप्रिशिएट किया जाएगा, जिन्होंने आखरत के लिए मेहनत करी, और वो वाली मेहनत करी जो कि आखरत की मेहनत है, वो वाली मेहनत करी। कुल्लन नुमिद्दू, हर एक को कुल, जैसे कुल का लफ्ज उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, नुमिद्दू हम पहुंचाते हैं, हम पहुंचाए जाते हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, लेकिन मतलब आसानी के लिए हमारी जुबान में हम पहुंचाते हैं, हा उलाई व हा उलाई, ठीक है, यानी हर एक को हम पहुंचाते हैं, हा उलाई व हा उलाई, हा उलाई का मतलब होता है उनको, वो, ठीक है, वो, ठीक है, तो उनको भी और उनको भी, यानी दोनों तरह के लोगों को, जिन्होंने के दुनिया की मेहनत करी और जिन्होंने आखिरत की मेहनत करी, उनको और उनको तेरे रब की बख्शिश में से, मिन अता रब्बिक, ठीक है, बख्शिश से यहां पर मुराद मगफिरत नहीं है, गुनाहों की बख्शिश नहीं, बल्कि बख्शिश वो जो कहते हैं ना, जैसे फकीर आकर के मांगते हैं ना, तो आप उसको कुछ बख्शीश दे देते हैं, बख्शीश का मतलब भीख, ठीक है, कुछ दे देते हैं आप, कुछ अता कर देते हैं आप उसको, ठीक है, तो मिन अता रब्बिक, अपने रब के अता में से, अपने रब के जो 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 खजाने हैं ना, तो उनमें से हम पहुंचा देते हैं, इनको भी पहुंचा देते हैं और इनको भी पहुंचा देते हैं। वमा काना अता रब्बिका महजूरा, और नहीं है तुम्हारे रब की जो अता है, अता यानी अल्लाह, तुम्हारा रब जो देता है ना, वो कोई महजूर नहीं है, महजूर वॉ के साथ, ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर जो है ना वो पाबंदी लगी हुई है, अल्लाह ताला के जो जो खजाने हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगी हुई, वो महजूर नहीं है, ठीक है, वो फॉरबिडन नहीं है, उसके ऊपर एम्बार्गो नहीं लगा हुआ कोई, ठीक है, कि तुम्हारे रब का जो अता है वो नहीं मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी या उसको नहीं मिलेगी, ठीक है भाई, रब जिसको देना चाहता है उसको देता है, कोई इंसान कोई मखलूक उसके ऊपर एम्बार्गो नहीं लगा सकती, रोक नहीं सकती उसको, तो आपके रब की जो अता है ना वो महजूर नहीं है। तो फिर दुनिया की चीजों के लिए दुआ किस नियत से करें और मेहनत कैसे करें, आगे 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 जरा गौर से सुने, फिर उसके बाद पता लगेगा आपको इंशाल्लाह। उन्जुर कैफा फद्दलना बादहुम अला बाद, उन्जुर देखो, नजर करो अपनी इस तरफ, कई फफदलना बादहुम अला बाद, हमने कैसे फजीलत दी बाज को बाज के ऊपर, ठीक है ना, हमने किसी को ज्यादा ऊंचा मुकाम दिया, किसी को हमने कम मुकाम दिया, आप इसको देखें, ठीक है ना, गौर करो उसके ऊपर, तवज्जो तवज्जो पे अटेंशन करो उसके ऊपर। वलल आखिरतु अकबरु दराजात, और जो आखिरत है ना, आखिर में आने वाली जो दुनिया है, जो आखिर में आने वाला जो 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 वक्त है, वो ज्यादा बड़ा है दराजात में, वो अकबर तफजीलन, और ज्यादा बड़ा है फजीलत में, वरना तो दुनिया की जिंदगी में भी हमने किसी को किसी के ऊपर फजीलत दी भी होती है। किसी के पास ज्यादा माल होता है, किसी के पास ज्यादा खूबसूरती होती है, किसी के पास ज्यादा जो है वो फिजिकल पावर होती है, किसी के पास ज्यादा अकल होती है, किसी के पास कम अकल होती है, ठीक है ना। तो दुनिया में भी हमने ऐसी तकसीम करी हुई है अपनी मर्जी से। अल्लाह ताला परवरदिगार है ना, मालिक है ना, मुख्तार है ना, तो अल्लाह ताला ने इस तरह से दुनिया में भी तकसीम करी हुई है। लेकिन असल जो बड़ाई है ना, वो तो आखिरत की तकसीम है, ठीक है, कि आखिरत में किसको बड़ा दर्जा मिला और आखिरत में किसको जो है वो फजीलत मिली, ये असल चीज है, ठीक है। तो ये जो आयात है ना 18 से लेकर के 21 तक, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना हमें यानी बहुत ही क्लियरली ये बात बता दी है कि आखिरत की क्या अहमियत होती है, ठीक है। और यानी इट्स नॉट समथिंग टू बी इग्नोर्ड, इसको आप जो है ना वो इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके ऊपर नजर होगी तो जो है ना वो कामयाबी होगी, इसके ऊपर अगर नजर नहीं होगी ना तो फिर कामयाबी नहीं होगी, ठीक है। तो आखिरत की फिक्र, आखिरत की तरफ सोच, आखिरत की तरफ नियत करना, इससे जो गाफिल रहता है ना तो उसको फिर फायदा नहीं हो रहा होता, दुनिया की जिंदगी वो बर्बाद कर रहा होता है, जाया कर रहा होता है। अब जो है उसको खुलासा तफसीर हमने पढ़नी शुरू करनी है, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा उसको ब्रेक चाहिए, तो उसको पॉज कर दें अपनी रिकॉर्डिंग को। अल्लाह की तो खुलासा तफसीर में फरमाते हैं कि जो शख्स अपने नेक आमाल से सिर्फ दुनिया के नफे की नीयत रखेगा, ख्वा इसलिए कि वो आखिरत का मुनकिर है या इसलिए कि आखिरत से गाफिल है, ठीक है। दो सूरतें हो सकती हैं सिर्फ दुनिया की नफे की नीयत करने की, ठीक है। एक सूरत तो ये हो सकती है कि वो आखिरत का मुनकर है, इनकार करता है कि नहीं आखिरत तो है ही नहीं, ठीक है। या दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि नहीं आखिरत का इनकार तो नहीं करता, मुसलमान है, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाया है, ठीक है, तो मानता है कि आखिरत है, मरने के बाद जिंदा होना है, ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी ऐसे गुजारता है कि वो आखिरत से गाफिल है, वो उसकी उसकी सोच आखिरत की तरफ नहीं होती, उसकी सोच जो है ना वो दुनियाई की जिंदगी में घूमती रहती है, ठीक है, अगरचे के मानता है आखिरत को, तो ये भी एक सूरत हो सकती है, ठीक है। तो फरमाते हैं कि जो शख्स अपने नेक अमाल से सिर्फ दुनिया के नफे की नीयत रखेगा, ठीक है, सिर्फ दुनिया के नफे की नीयत रखेगा, ख्वा इसलिए कि वो आखिरत का मुनकर है या इसलिए कि आखिरत से गाफिल है, हम ऐसे शख्स को दुनिया ही में जितना चाहेंगे, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम जितना चाहेंगे, अच्छा फिर तफसीर में हजरत लिखते हैं फिर ये भी सबके लिए नहीं है बल्कि जिसके वास्ते चाहेंगे, जितना चाहेंगे जिसके वास्ते चाहेंगे, ठीक है, फिलहाल ही दे देंगे, यानी इस दुनिया की जिंदगी में ही दे देंगे, इसी हाल में दे देंगे जिस हाल में वो है दुनिया की जिंदगी, ठीक है। तो यानी दुनिया ही में कुछ जजा मिल जाएगी, उसकी मेहनत की जजा दुनिया की जिंदगी में ही उसको कुछ मिल जाएगी, फिर क्या होगा आखिरत में खाक ना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आखिरत में। खाक का मतलब होता है तुम्हें यानी धूल धूल मिलेगी, और धूल जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है, डस्ट की मिट्टी की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। तो ये उर्दू का मुहावरा है कि खाक भी नहीं मिलेगी तुम्हें, बल्कि वहां हम उसके लिए जहन्नुम तजवीज कर देंगे, वो उसमें बदहाल रांदा दरगाह होकर दाखिल होगा, ठीक है, यसलाहा मज़मूमम मदहूरा, ठीक है, रांदा दरगाह होकर के यानी अल्लाह ताला के दरगाह में जो है ना वो रिजेक्टेड हो रांदा, और जो शख्स अपने आमाल में आखिरत के सवाब की नीयत रखेगा और उसके लिए जैसी कोशिश करनी चाहिए वैसी ही कोशिश भी करेगा, ठीक है। वमन अरादल आखिरता वसअलहा सअयहा, ठीक है, मतलब यह है कि हर कोशिश भी मुफीद नहीं है, बल्कि कोशिश सिर्फ वही मुफीद है जो शरीयत और सुन्नत के मवाफिक हो, क्योंकि हुक्म ऐसी ही कोशिश का दिया गया है, जो अमल और सई शरीयत और सुन्नत के खिलाफ हो वो मकबूल नहीं है, वो कबूल नहीं होती, ठीक है। आज की जिंदगी के अंदर जो है ना, वो ये समझने के सबसे अहम उसूल, क्योंकि आज की जिंदगी के अंदर, इस दौर के अंदर जो है ना, वो दीनदारी जो है ना, ये तो बहुत आम हुई हुई है। बहुत सारे लोग, बल्कि तकरीबन सारे ही लोग जो है ना, हत्ता के अब तो जो 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 मीडिया के एक्टर्स है ना, मीडिया वाले जो है ना, वो भी दीन दीन खेल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं बचपन में हम पिट्टू पिट्टू खेलते थे, ठीक है, तो उसी तरीके से आजकल हर बंदा दीन दीन खेल रहा है, पिट्टू पिट्टू की तरह खेल रहा है। क्या मतलब, दीन को एक मजाक बनाया हुआ है, ठीक है ना, सबके सब दीनदार हो गए, लेकिन कौन सा वाला दीन? अपनी मनमर्जी का दीन। जो मैं समझता हूँ दीन है ना, वही दीन है, मैं उसी दीन पे अमल करूंगा जिसको मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ, है ना, अल्लाह ताला से वासिल होना। अब वही वो टीवी ड्रामे की बात हो रही थी चंदनों अभी थोड़ी देर पहले, तो एक टीवी ड्रामा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, कि उस टीवी ड्रामे में जो है वो पता नहीं कोई कोई लड़की है, गैर मुस्लिम लड़की थी, ठीक है, तो वो जो है ना, वैसे तो बड़ी हसमुख किस्म की, वो उसके रिव्यू किसी ने भेजा था, थोड़ा सा छोटा सा था वो, तो इस वजह से साजिश ने पढ़ लिया, तो बड़ी जो है ना वो हंसी मजाक की जिंदगी तो गुजार, लेकिन बड़ी अंदर से जो है ना वो टूटी हुई है और बड़ी ब्रोकन है, और बहुत उसको जो है ना वो परेशानी है। तो अब जो है ना वो एक हसीन प्रिंस आते हैं उनकी जिंदगी के अंदर, ठीक है ना, और वो प्रिंस साहब जो है ना वो उनको अल्लाह से जोड़ देते हैं आकर के, ठीक है, यानी नौजवान लड़की और नौजवान लड़का है ना, दीन दीन पिट्टू पिट्टू खेल रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है ना, और अल्लाह से जुड़ गए। इन साहब ने जो कि पहले से ही जाहिर है खुद ही अल्लाह के वली थे, तो इन्होंने जो है ना वो उस गैर महरम लड़की को अल्लाह से जोड़ दिया, माशाल्लाह क्या बात है भाई, ठीक है ना। पर्दे का हुक्म किधर गया? पर्दे क्या क्या चीज होती है, ये कहाँ से आ गया है? ये मौलवी लोगों ने बस बनाई हुई है खाली मुश्किलात, है ना, मौलवी लोग जो है ना ये ठेकेदार बने हुए हैं दीन के, और ये जो है वो बताते हैं कि ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, है ना भाई, हम मैं और मेरा अल्लाह बस, अल्लाह बस बाकी हवस, अल्लाह बस बाकी हवस, सुना है आप लोगों ने? तो वो असल में तो हमारे मशायख ने और औलिया कराम ने कहा था अल्लाह बस बाकी हवस, ठीक है। आजकल अल्लाह बस बाकी हवस का क्या तर्जुमा है भाई, कोई बताएगा आप में से? अल्लाह बस बाकी हवस जी, आजकल इसका क्या तर्जुमा करेंगे? यानी दुनिया में जो इस वक्त राइज तर्जुमा है, अल्लाह बस बाकी हवस, इसका राइज तर्जुमा क्या है, कोई बताएगा? जी, सिर्फ नमाज रोजे बाकी मन मर्जी, नहीं इतना अच्छा नहीं है इसका तर्जुमा, नो नीड ऑफ एनी मौलवी, नहीं तो अब हवस का तर्जुमा बताया ना, हवस का क्या मतलब है फिर? इसका मतलब ये है कि अल्लाह बस बाकी हवस, शरीयत सुन्नत अल्लाह के हुक्म, राइट, और कुरान मजीद की और साहबे कराम की जो बताई हुई बातें हैं, वो सब का सब हवस है। किसकी हवस है? मौलवियों की हवस है। ये मौलवी जो है ना, वो अपना पेट पालने के लिए उन्होंने शरीयत बनाई हुई है, मौलवियों ने पेट पालने के लिए हुक्म जो है ना वो बनाए हुए हैं, मौलवियों ने अपना पेट, बल्कि पालने के लिए नहीं, पेट मोटा करने के लिए, है ना, क्योंकि मौलवी तो मोटा मशहूर है ना, ठीक है, तो मोटे मौलवी साहब जो है ना, उन्होंने ये शरीयत बनाई हुई है, घड़ी हुई है अपनी हवस की खातिर, और अल्लाह बस मैं और बस अल्लाह, है ना, आई विल फिगर आउट हाउ टू प्लीज अल्लाह, आई विल फिगर आउट हाउ टू गेट क्लोज टू अल्लाह, ठीक है ना, और बाकी सब का सब नाउज बिल्ला हवस। किसकी हवस? मेरी हवस नहीं, मौलवियों की हवस, ठीक है जी। तो आजकल अगर आप लगाए ना इस किस्म का अल्लाह बस बाकी हवस, तो भी सोच लिया करें कि इसका ये मतलब भी लिया जा रहा है, ठीक है। तो वो जो नौजवान लड़के साहब है, उन्होंने नौजवान लड़की साहबा को अल्लाह से जोड़ दिया, और इसमें उनकी रहनुमाई किसने करी? रहनुमाई जो है वो उन्हीं से ज्यादा खूबसूरत और क्लीन शेव्ड आलिम दीन साहब ने, जो कि फॉरवर्ड लुकिंग हैं, ओपन माइंडेड हैं, ठीक है ना। तो ये आपका मीडिया जो है वो इस वक्त उन लोगों को दिखा रहा है जो कि मीडिया को देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मीडिया को देखते ही नहीं है उनके ऊपर इसका असर नहीं होगा, डायरेक्टली असर नहीं होगा कम से कम, ठीक है ना, इनडायरेक्टली कैसे असर होगा, क्योंकि खानदान के दूसरे लोग जो मीडिया को देखते हैं ना, तो वो ऐसे ही ऐसे ही दीन के ऊपर अमल कर रहे होंगे, और फिर जाहिर है जो मीडिया को नहीं देखते उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, ऐसे लोगों को डील करना, ऐसे लोगों से जो है वो अपने आप को और अपनी औलादों को बचाना मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, मजीद मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो खुद भी समझें इस बात को और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करें। ठीक है, तो कुरान मजीद में तो ऐसा नहीं है भाई, साय सायहा है आखरत वाली, जो 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 मेहनत है ना वो है, उसकी वजह से आखरत मिलेगी, वरना इस दुनिया के अंदर एक से एक तुम ड्रामेबाजियां करते रहो और अपने आप को अल्लाह का वली समझते रहो, मरोगे तो सब खुल जाएगा कि नहीं ये तुम्हारी मनमर्जी वाला दीन नहीं था असल में। आजकल दीनदार लोग में भी बहुत सी बुराई देखने को मिलती है, ऐसा क्यों है? दीनदार लोगों में भाई हम तो आपको यही तो बता रहे हैं, दीनदार लोगों में आजकल हर बंदा दीनदार है, हर बंदा दीनदार है, जो ड्रामा देख रहा है वो भी दीनदार है, ठीक है ना? और जो यानी तो भाई अब मन मर्जी का दीनदार ना, दीनदार क्या, दीनदार का जो लफ्ज है इसकी तशरीह समझें, इसका मफहूम समझें, दीनदार ये दीन का लफ्ज का मतलब ये नहीं होता है कि शरीयत वाला ही दीन, दीन तो भाई जो आपने अपनी खराफात बनाई हुई है वो भी दीन है आपका, बादशाहों का दीन क्या मतलब लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना बादशाहों का दीन, तो भाई बादशाह भी अगर कोई दीन बना दे तो वो भी दीन ही कहलाता है, लेकिन वो हकीकी दीन तो नहीं है ना, वो अल्लाह का दीन तो नहीं है ना, वो बादशाह का दीन है। ठीक है, तो उसी तरीके से नफ्स और शैतान का भी एक दीन होता है, तो हम भी जो दीनदार बने हुए हैं ना, हम नफ्स और शैतान वाले दीन के ऊपर अमल कर रहे हैं, हम कुरान और हदीस वाले दीन के ऊपर अमल नहीं कर रहे, हम नफ्स और शैतान वाले दीन पे अमल कर रहे हैं लेकिन कहलाते दीनदार हैं। ठीक है, ठीक है, तो दीनदार का लफ्ज जो है ना इससे इज वेरी लोडेड, इसके अंदर बहुत सारी तफसीलात शामिल हैं कि आप कौन से वाले दीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल तो फरमाते हैं कि जी बशर्ते कि वो शख्स मोमिन भी हो, सो ऐसे लोगों की सही मकबूल होगी। ठीक है, गर्ज अल्लाह के यहाँ कामयाबी की शर्तें चार हुई। अब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ना इनको सम अप किया है कि कामयाबी के लिए चार शर्तें हैं अल्लाह के नजदीक। सही है, अव्वल तसहीह नीयत, यानी खालिस सवाब आखिरत की नीयत होना जिसमें अगराज नफसानी शामिल ना हो। ठीक है, कामयाबी के लिए नंबर वन शर्त वो आखिरत की सवाब की नीयत, ठीक है, जिसमें अगराज नफसानी शामिल ना, यानी नफसानी खुशी अगर है तो फिर वो मकबूल नहीं। सही है, दूसरे उस नियत के लिए अमल और कोशिश करना, सिर्फ नियत और इरादे से कोई काम नहीं होता। ठीक है, यानी नियत तो आपने कर ली लेकिन आपने कुछ उसके लिए किया भी, कोशिश भी करी, कुछ अमल भी किया, तब जो है वो कामयाबी मिलेगी, और अगर अमल कोई नहीं किया सिर्फ नियत करी है तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये दूसरी शर्त होगी। तीसरी शर्त तसहीह अमल, यानी सही व अमल का शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होना, यानी अमल भी सही हो, सिर्फ नियत सही होना काफी नहीं है बल्कि अमल भी सही हो, जैसे कि नियत है कि भी मैं गरीबों की मदद करूंगी और मुझे अल्लाह ताला उसके ऊपर सवाब देगा, वो एक मशहूर है बचपन में वो अखबार में आती थी जो पढ़ लिया करते थे। ठीक है, वो फूलन देवी की एक किस्सा होता था, फूलन देवी वो इंडिया के भोपाल के अंदर होती थी, वो तो वो बन गई थी इस तरह से, जो भी उसकी रीजंस थी, तो अब जो है ना वो लोगों को लूटा करती थी, अमीरों को लूटती थी गरीबों का मदद करने के लिए, और भगवान की खुशी भी उसके दिल के अंदर होती थी, भगवान की खुशी। ठीक है, और भगवान जो है वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज है। ठीक है, लेकिन उसका जो रास्ता था ना, तरीका जो था ना, ये जायज नहीं था कि वो किसी का माल लूट ले, ये माल लूटना जो है ये जायज नहीं है। ठीक है, तो फरमाया कि तसहीह अमल जो है ये भी एक शर्त है, और चौथी शर्त क्या है, अच्छा बल्कि इसके लिए एक अखली दलील भी दी है कि मकसद के खिलाफ सिमत में दौड़ना और कोशिश करना बजाय मुफीद होने के मकसद से और दूर कर देते हैं। ठीक है, यानी आप घर से निकले, आपकी नियत तो थी कि जी मैं मक्का मुकरमा जाऊंगी, ठीक ठीक है ना, नीयत आपकी बड़ी अच्छी है, आप मक्का मुकरमा अल्लाह के घर जाना चाहती हैं, लेकिन आपने जो सफर शुरू कर दिया ना, और सफर में तो जाहिर है मेहनत लगती है ना, सफर आपने शुरू कर दिया दमाम की तरफ, ठीक है, तो क्या आप अपनी नीयत के मैं मक्का मुकरमा जाना चाहती हूँ इस नीयत से आप मक्का मुकरमा पहुंच जाएंगी? नहीं, आप तो दमाम पहुंच जाएंगी, ठीक है, जो कि बिल्कुल उल्टी समत में है। मेहनत बड़ी करी आपने, वो इतना सफर किया, इतना जो है वो गाड़ी चलाई या गाड़ी पर बैठी और इतनी मेहनत करी, लेकिन मंजिल तक पहुंची नहीं, दूसरी मंजिल पर पहुंच गई, ठीक है, क्योंकि मेहनत दूसरी डायरेक्शन में कर रही थी, जो उस डायरेक्शन की मेहनत थी ना, मक्का मुकरमा जाने की डायरेक्शन वाली जो मेहनत होती है ना, कि भाई आप इस डायरेक्शन में जाएं और जो है वो आप चलती रहें और 900 किलोमीटर तक रियाद से जाएं वो चलती रहें, वो वाली मेहनत तो आपने करी नहीं, तो मक्का कैसे पहुंचेंगी आप? ठीक है, अच्छा, और चौथी शर्त जो सबसे अहम और सबका मदार है, वो तसहीह अकीदा यानी ईमान है, ठीक है, यानी जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है उसके ऊपर ईमान लेकर के आना, उस पे इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलकल्ब, ठीक है, कल्ब से जो है उसकी तस्दीक करना और जुबान से जो है इसका इकरार करना, जो कृष्ण नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, ठीक है, तो इसको कहते हैं ईमान। और अगरचे के इसको उन्होंने ऑर्डर के अंदर फोर्थ पॉइंट के ऊपर रखा है, लेकिन ये सबसे अहम है और इसके ऊपर हर चीज का दारोमदार है, तसीह अकीदा यानी ईमान। इन शरायत के बगैर कोई अमल अल्लाह के नजदीक मकबूल नहीं है, और कुफार को दुनिया की नेमतें हासिल होना उनके अमाल की मकबूलियत की अलामत नहीं, क्योंकि दुनिया की नेमतें मकबूलीन बारगाह के लिए मखसूस नहीं है, ठीक है, तो दुनिया के अंदर जो काम बन जाते हैं ना, जिनके अंदर आखिरत की नियत नहीं की जा रही होती, दुनिया के अंदर ऐसे काम भी अल्लाह ताला कभी बना देते हैं, ठीक है, तो काफिरों के भी बना दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी होते हैं जो कि बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनके अंदर उनकी आखिरत की नियत नहीं होती, उनको दुनिया के अंदर वो चीज मिल जाती है, ठीक है, लेकिन ये आखिरत की कामयाबी की अलामत नहीं होती, दुनिया के अंदर आप कामयाब हो गए, आपको कोई चीज मिल गई, ठीक है, तो अब जो आपका सवाल था ना ऊपर कि फिर दुनिया की चीजों के लिए दुआ किस नियत से करें और मेहनत कैसे करें, भाई आखिरत की नियत से दुआ करें कि अल्लाह दुनिया की जो चीज मुझे मैं आपसे मांग रही हूं, तो ये दुनिया की चीज भी जो है ना, वो मैं दुनिया में इस्तेमाल तो करूंगी लेकिन इसके जरिए से मैं आखिरत का सवाब कमाऊंगी, आखिरत का सवाब कमाऊंगी, इस दुनिया की चीज जो कि मैं आपसे मांग रही हूँ ना, औलाद मांग रही है ना, किसी किसी शादीशुदा औरत है उसकी औलाद नहीं है, है ना, वो अब अल्लाह ताला से दुआ करिए, अल्लाह आप मुझे औलाद दे दीजिए, अल्लाह आप मुझे औलाद दे दीजिए, ठीक है ना, तो दिल के अंदर ये नियत रखे कि अल्लाह आप मुझे औलाद देंगे ना, तो मैं इस औलाद को देख करके भी आपका शुक्र करूंगी और इस औलाद की परवरिश भी मैं आपकी बंदगी के लिए करूंगी, मैं इसको आपका बंदा बनाऊंगी, मैं उस औलाद को आपका बंदा बनाऊंगी, ठीक है ना, और इसकी तालीम और तरबियत जो है वो आपके दीन के मुताबिक करूंगी, आपकी मर्जी के मुताबिक करूंगी, ठीक है, औलाद क्या है, अल्लाह की नेमत है, सही है, ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो कि अल्लाह की नेमत नहीं है, आपने कोई एक्स्ट्रा मांग ली है अल्लाह की नेमत से, बाहर कोई चीज मांग ली है, अल्लाह की नेमत मांगी है ना अल्लाह ताला से, ठीक है, तो आखिरत के सवाब की नियत औलाद के अंदर, जब औलाद के अंदर आखिरत के सवाब की नियत की जा सकती है, जैसे कि अभी आपके सामने मिसालों से बयान किया, तो जो अल्लाह ताला से जो है वो नौकरी मांग रहे हैं, तो नौकरी के अंदर क्यों नहीं अल्लाह की रजा की नियत की जा सकती, ठीक है ना, अगर अल्लाह की रजा की नियत नहीं करी नौकरी मांगने में, सवाब की नियत नहीं, कि अल्लाह मुझे नौकरी मिलेगी या मेरे मेरे शौहर को नौकरी मिलेगी या मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी, तो आपकी रजा के लिए हम उस नौकरी से जो 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 पैसे मिलेंगे हम उसको आपकी रजा के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, तो अगर आपने ऐसी नियत नहीं करी उस दुआ के अंदर, तो नौकरी तो अल्लाह ताला अगर चाहेंगे तो दे देंगे, लेकिन आखिरत का कुछ नहीं मिलेगा उस नौकरी के जरिए से, जाया हो गई आपकी वो नौकरी, दुनियावी एतबार से जाया नहीं हुई, आखिरत के एतबार से जाया हो गई, ठीक है ना, तो भाई ये बेयर मिनिमम है, ये बेयर मिनिमम है कबूलियत के लिए, शरायत का मतलब ये होता है कि ये चीजें जो है ना वो मीट होंगी तब कुछ होगा, ठीक है, इस चीज को शर्त कहते हैं, आखिरत की कबूलियत अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत कब होगी? जब ये शराइत पूरी होंगी, और अगर आपने शराइत पूरी नहीं करी तो कबूलियत नहीं होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब ये मुश्किल लगे या आसान लगे, है तो बहुत आसान, बहुत आसान है ये, लेकिन शैतान कहता है बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना, ये कैसे करोगी तुम? ये कैसे हो सकता है कि हर चीज में आखिरत की नियत करो? तो शैतान है, वो तो यही करेगा आपके साथ। ठीक है, और क्या लिखा आपने? बहुत से लोग मुझसे कहते थे कि आलिमा के कोर्स में क्या दुनिया का फायदा है। उनसे कहें कि भाई अल्लाह की बंदी, अल्लाह के बंदे, मैं आलिमा का कोर्स आखिरत के फायदे के लिए कर रही हूं। ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ठीक है, दुनिया के फायदे के लिए आलिमा को कोर्स करना, भाई वो तो जहन्नुम के अंदर ठिकाना बनाना है। अगर दुनिया के फायदे की नीयत से आलिमा कोर्स या दीन का इल्म, दीन का इल्म, आलिमा कोर्स को रहने दें, दीन का इल्म, ठीक है ना, क्योंकि ये जो दीन एसेंशियल्स है ये तो आलिमा कोर्स नहीं है ना, ठीक है ना, लेकिन है तो दीन का इल्म। ठीक है, तो दीन का कोई इल्म अगर दुनिया की फायदे की नीयत से किया जा रहा है तो वो सिर्फ जाया नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आपको आपको कबूलियत नहीं मिली, दुनिया की चीज मिल गई, नहीं, उसके ऊपर अजाब होगा, उसके ऊपर अजाब होगा, क्योंकि जो दीन का इल्म है ना, ये तो है ही आखिरत की चीज, और ये तो है ही सबसे प्रेशियस चीज, और उसके अंदर आपने घटिया नियत कर ली, दुनिया के फायदे की नियत कर ली, इसके ऊपर छोड़ नहीं दिया जाएगा कि चलो दुनिया की कोई चीज दे दी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, नहीं, अजाब होगा उसके ऊपर। जबकि आपने गाड़ी मांगी और गाड़ी मांगने के अंदर आपने आखिरत की नियत नहीं करी, तो गाड़ी आपको अगर मिल गई तो वो आपको आखिरत के लिए कबूल नहीं हुई वो गाड़ी, ठीक है ना, लेकिन दुनिया के अंदर तो आपको फायदा हो गया उस गाड़ी का, ठीक है ना, अजाब तो नहीं हुआ ना उस गाड़ी के जरिए से आपको कि जहन्नुम में फेंका जा रहा है आपको, है ना, क्या आखिरत की नीयत से तुमने गाड़ी नहीं मांगी तो जहन्नुम में जाओ। लेकिन दीन का इल्म अगर दुनिया की नीयत से हासिल किया, अजाब, जहन्नुम में जाओगे। तुमने मेरे दीन के साथ ये किया है, ठीक है ना, इसके बारे में तो बहुत ही बड़ी वईद आई है हदीस मुबारक के अंदर। हम बोले हमें आखरत चाहिए, दुनिया जैसे भी गुजर जाएगी, बाकी सब दोस्त लोग अदर कोर्सेस कर रहे हैं। अब आपने अपनी माशाल्लाह यहाँ पे लाइफ स्टोरी तो नहीं बयान करनी, ठीक है, अल्लाह आपको जो खैर दे कि आपने अच्छी नीयत करी और इस रास्ते के ऊपर जो है वो आप आई हैं, तो अल्लाह ताला इसके ऊपर आपको इस्तकामत नियत में भी और मेहनत में भी इस्तकामत अता फरमाए। और जितने लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहे आलमा कोर्स की शक्ल में कर रहे हैं, चाहे उसके अलावा दर्स कुरान और तरबियती क्लासेस की शक्ल में दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको इस मेहनत के अंदर कबूलियत तमाम अता फरमाए और इस इल्म को सही से समझने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته